તારીખ 28/8/1998 શ્રી તત્વાનુશીલનમાંથી સરળતાના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 695
તત્વાનુશીલન માપાનું ત્રાસી નીચે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે.
પરિણામની
સરળતાને લીધે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. વિશિષ્ટ પ્રકારની એટલે
ખાસ પ્રકારની,
ચોક્કસ પ્રકારની સરળતાને કારણે
પરિણામ કી સરળતા
કે કારણ છે વિશિષ્ટ પ્રકાર કી
યોગ્યતા પ્રાપ્ત
હોતી હૈ. જિસ કારણ છે જીવ સત્પુરુષ કે આશય કો ગ્રહણ કરને કો પાત્ર હોતા હૈ. હિન્દી છે સર? નીચે હિન્દી છે.
सत्पुरुष के वचन तो सत्पुरुष के
ऐसे प्रकार के होते हैं, सभी वचनों में
एक आत्मकल्याण का आशय हमेशा हमेशा रहता है.
वो आशय सरलता वाला जीव को ग्रहण करने के योग्य होता है. सरलता के कारण से
ऐसी मति निर्मल होती है और जीव
सत्पुरुष के वचन का आशय को ग्रहण कर सकता है. ऐसी योग्यता बिना
अनेक उत्कृष्ट निमित्तों का योग मिलने पर भी
आशय ग्रहण न होने से जीव आत्महित से वंचित रहा है. निमित्त तो तीर्थंकर योग जैसे निमित्त
भी बने हैं,
परंतु आशय ग्रहण नहीं कर सकने से वो आत्मकल्याण से वंचित रह गया. यह परिस्थिति दर्शाती है कि असरलता से कितना बड़ा नुकसान है.
असरलता
से इतना बड़ा नुकसान है कि जीव को उत्कृष्ट निमित्त
मिले
फिर भी आत्मकल्याण से वंचित
हो जाए,
ऐसा बनता है. जो जीव पक्षपात रहित होकर अपने देश का अवलोकन करके निषेध न करे तो उसे अपने दोष का जाने अनजाने में बचाव होता है. तथा ऐसे
प्रकार में
उसे अपने दोष की गुप्त अनुमोदना वर्तती है जिससे दोष का अभाव हो नहीं सकता. दोष का
जानना
वो भी पक्षपात रहित जानना,
निष्पक्ष होकर के जानना
और फिर उसका निषेध आना, यहां तक बात होनी चाहिए. अगर निषेध नहीं आता है तो दोष का पक्ष हो जाता है अनजाने में. निषेध नहीं होता
तो अनुमोदन हो जाता,
अनुमोदना हो जाती.
और
जितना दोष बड़ा हो इसके अनुपात में निषेध भी बलवान रूप से आना चाहिए, जोर से आना चाहिए. तभी देश का अभाव हो, जब मंद हो पहले होवे फिर अभाव होवे। अगर ऐसा नहीं होता तो अनुमोदना हो जाती है, और उस अनुमोदना का ख्याल नहीं रहता। इस अनुमोदना हो गई है ऐसा खुद को ही जानने में नहीं आता, ऐसी गुप्त प्रकार से ये अनुमोदना होती है, इसलिए उसको गुप्त अनुमोदना कहते हैं। फिर से एक तो दोष होता है, बहुभाग जीव को तो पता ही नहीं चलता है कि दिन भर में मेरा दोष कितने कितने कैसे कैसे हुए। जिसको दोष से मुक्त होने की दरकार होती है उनको जागृति आती है, वो जागृति मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता की जागृति में वो अपना दोष को देखता है, तो भी निष्पक्ष होना जरूरी है। पक्षपात वाले क्या करेगा, गौण कर देगा, हम तो वितराग हुए नहीं, तो इतना तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होना, ये अनुमोदना हो गई। तो क्या हो गया, अनुमोदना, ऐसा नहीं होना, निषेध आना चाहिए। दोष दोष है, थोड़ा हो छोटा हो या बड़ा हो, उसका निषेध इसके अनुपात में, इसके प्रमाण में आना चाहिए, वरना अनुमोदना हो जाएगी और दुष्ट दोष से मुक्त होने का अवसर नहीं आएगा। जी, भूमिका अनुसार दोष रहता है, उतना ही नहीं भूमिका अनुसार दोष का निषेध भी होता है। ऐसा नहीं है कि दोष रहता है, दोष का निषेध भी होता ही है, तभी तो उसको भूमिका कहते हैं। अगर दोष का निषेध नहीं आई तो भूमिका भी कहाँ की रही, तो दोनों बात है। ये अकेला दोष होता है वो बात नहीं है, दोष तो पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक तो भूमिका अनुसार रहेगा, लेकिन वो तो जानने का विषय है, वो तो सिर्फ जानने का विषय है। इसका निषेध तो आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, पर वो सहज रूप से होना चाहिए। नहीं आता है वेदना, स्वयं दोष का कड़ा निषेध है। क्या है वेदना, क्या चीज है, दोष का बहुत बड़ा पश्चाताप होता है तब तो वेदना आती है। चार गति में परिभ्रमण करके अंततः तो निगोद में जाना होगा, पर ऐसे परिणाम हमारे चल रहे हैं इसका हमें कुछ लगता नहीं, लगे तो वेदना है, लगता नहीं है। तो जितना दोष बड़ा है इसके अनुपात में अगर निषेध नहीं आता है तो वेदना कहां से आएगी, और वेदना आए बिना अंतकरण की शुद्धि होगी नहीं। शुद्ध अंतकरण बिना कोई भी धर्म साधन सफल होता नहीं, मलिन अंतकरण वाले को कोई भी धर्म साधन सफल नहीं होता। अनुपात में निश्चित आना, वरना गौण करता है, हमारा क्या है, गौण कर देता है, हल्का कर देता है, लाइटली ले लेता है, तो दोष कहां से मिटेगा, ये दोष मिटने का कोई प्रसंग नहीं है, फिर अवसर ही नहीं आएगा। हाँ, उससे ज्यादा निषेध आएगा, तो उससे ज्यादा निषेध बलवान होगा तब तो मन तो कमजोर होगा। कमजोर कब होगा? परंतु जो जीव सरलता पूर्वक मध्यस्थता से अपने दोष को देखता है, उसे दोष को दोष के गुप्त अनुमोदन का अभाव होता है, अतः वह दोष भाव निराधार होकर रसहीन होकर शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। निषेध नहीं आया तो उसको आधार मिल गया, दोष हुआ और उसका निषेध नहीं आया तो क्या हुआ? उसको आधार मिल गया। किसका आधार मिला? आत्मा का आधार मिला। आत्मा का माने अनंत शक्ति वाले का आधार मिला है, ये बात होगी। और उसका निषेध हुआ, आत्मा ने उसका निषेध किया, तो उसको रहने का आधार फिर कौन है? दोष तो आत्मा के आधार से होता था, टिकता था और पनपता था, तो उसको आधार नहीं मिलता है तो कहां से बचेगा? वो कहां रहेगा? निराधार होकर के कहां रहेगा? निराधार हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। और जब रस नहीं रहता है तो शक्ति नहीं है उस दोष में, फिर हो गया पंगु तो फिर टिक नहीं सकता, बच नहीं सकता। मुमुक्षु की भूमिका के सर्व प्रकार के दोष का नाश करने के लिए सरलता सर्वोपरि शस्त्र है। एक ऐसा शस्त्र है कि मुमुक्षु की भूमिका के दोष का नाश हो कर देगा। जितनी सरलता अधिक है उतना लाभ है, जितनी सरलता कम है उतना लाभ भी कम है, ऐसा समझना चाहिए। संवेद का कारण लक्ष्य और ध्येय होता है। सरलता तो थ्रू आउट होनी चाहिए मुमुक्षु को, सभी भूमिका में, सभी भूमिका में होनी चाहिए। संवेद का कारण है पूर्णता का लक्ष्य। जिसको पूर्णता का लक्ष्य है उनको त्वरा से काम कर लेना है, उसको देर होती है, वो पूछाता नहीं है, और उसको समय बिगड़ता है वो भी पूछाता नहीं है। सरलता से विरुद्ध और सरलता के परिणाम है जीवों को अनेक प्रकार से उत्पन्न होते हैं। कितने कितने कैसे कैसे प्रकार है वो यहाँ लिया है। उसका स्वरूप भी समझने योग्य है, क्योंकि भूल से भी असरलता को नहीं समझे ऐसा नहीं बोले। हाँ ये तो है, सरलता पूरी होने से उपयोग भी सरल होकर के स्वरूप सम्मुख होगा, और वरना तिरछा आड़ा होकर के राग के साथ एकत्र करेगा। राग की एकता तोड़ता है उपयोग, पर सरल होकर स्वरूप में समाता है, वो पारमार्थिक उपयोग की सरलता है। उन आखिर में वही बात लिया है, सरलता के प्रकरण में आखिर की जो बात ली है वो वही ली है। क्या कहते हैं कि असरलता के रूप कितने होते हैं, वो भी अलग अलग देश को धारण करता है, पहचान लेना चाहिए। कैसे पहचानना? अपने परिणमन के अनुभव से पहचानना, वरना स्मृति ज्ञान में तो विस्मृत हो जाएगा, लेकिन अपने परिणमन में उसको देख लिया और पहचान लिया, फिर कोई भी वेश को धारण करके आएगा तो पकड़ने में आ जाएगा। કેમ કે તમે તમારા ઘરના મેમ્બરને ઓળખો છો, બરાબર છે? એ ગમે એ વેશ ધારણ કરે તો હે ઓળખાય જાય કે ન ઓળખાય? કેમ તમે ઓળખો છો એટલે પહેચાન એસી ચીજ હે કે પહેચાન વાલા ભ્રાંતિ મેં નહીં રહેતા। ऐसे कोई व्यक्ति की पहचान हो या कोई परिणाम की पहचान हो, फिर कोई रूप बदलता है तो भी पहचानने में आ ही जाता है। ऐसे जैसे एक दृष्टांत और ले लें कि पूर्णता के लक्ष्य के बाद अवलोकन का स्टेज आता है, मुमुक्ष होता आरोहण क्रम में। अवलोकन से क्या होता है कि चलते हुए परिणाम को देखता है, उसमें जो अनुभव होता है वो अनुभव को समझता है और उस तरह से अपने भावों का परिचय बढ़ता है। वो परिचय बढ़ने से उसकी जाति की पहचान हो जाती है। परिणाम में दो जाति है, एक स्वभाव जाति और एक विभाव जाति के परिणाम है। विभाव जाति के परिणाम बहुत प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के हैं, तो बहुरूपिया है। जैसे बहुरूपिया अनेक वेश धारण करता है, पुरुष होता है तो कभी स्त्री का वेश धारण कर लेता है, कभी जो उसको पहचानता है उसको पहचान लेता है। ऐसे विभाव परिणाम मंद कषाय का रूप धारण करता है तो भी विभाव है, मंद कषाय होती है तो मानसिक शांति पर सातावेदनी रहती है तो भी उसको पहचान लेता है। अवलोकन वाला उसको पहचान लेता है कि आत्मा की शांति नहीं है, ये मानसिक शांति है, कृत्रिम है, यहां मेरे को रुकना नहीं है, वो पहचानेगा। और बहुभाग लोग मानसिक शांति में ही धोखा खाते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान की शिविर में जाते हैं, वहां मानसिक शांति हो जाती है। उनका मेल होता है सातावेदनी और मानसिक शांति का एक साथ होना बनता है, लगता है कि हमको आत्मा की शांति मिली है। हाँ, जाति की पहचान नहीं है तो सातावेदनी में अनुगमा होगा और सातावेदनी में गमेगा, पहचान नहीं है। दोनों निषेध करने योग्य है, वो तो पहचान आएगी तब तो होगा, पहचान नहीं है तो कहां से होगा? इसलिए भेद ज्ञानी है वो मानसिक साता और शांति से भी भेद ज्ञान करता है, सूक्ष्म विकल्प से भी भेद ज्ञान करता है, यही कारण है इसका। इसलिए उनको स्वानुभूति उत्पन्न होती है जो आत्मा की शांति को लेकर के होती है। आकुलता तो सब विभाव में होएगा, सभी विभाव में होएगा, जितने भी विभाव है उसमें आकुलता तो है। सरलता सरलता है और असरलता असरलता है, तो असरलता के कितने कितने प्रकार है वो यहाँ शब्द लिया है, उसका जो वाच्य रूप भाव है वो अपने में देखना है। अच्छा, जैसे वक्रता, वक्रता और कृत्रिमता, कृत्रिमता दो प्रकार से होती है, बोलने में वचन कृत्रिमता और हाव भाव में चेष्टा में होने वाली कृत्रिमता, ऐसे दो प्रकार की कृत्रिमता होती है, वो भी असरलता के परिणाम है, सरलता से विरुद्ध है। दंभ, दिखाव करना, क्या दिखाव अच्छा करना, वो भी असरलता है। कुटिलता, कुटिलता करना मैंने प्रपंच करना, किसी के साथ कुटिलता से प्रपंच करना, किसको फंसाना, किसी को छेतरपिंडी करना, ये सब कुटिलता है। माया, मायाचार करना, झूठ बोलना या मन में कुछ हो दिखाना कुछ हो, ऐसे छल करना, कपट करना, हठाग्रह, आग्रह के परिणाम, वो भी असरलता है। हमारी बात को छोड़ेंगे ही नहीं, वो असरलता है। और जिद, ये सभी प्रकार के परिणाम असरलता के द्योतक है, यानी असरलता को दिखाता है, द्योतक है माने असरलता को दिखाने वाले हैं। कपट में जाली नोट भी किसको दे देना, वो कपट है, अनेक प्रकार के कपट होते हैं। हाँ, छेतरपिंडी करना, कपट करना, है कूटनीति से प्रवृत्ति करना, वो सब कपट है। आनंद गंजी ने गाया है, आनंद गंजी ने एक जगह गाया है, अरे तू जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हो और तेरे में कोई सुधार तो होता नहीं, जैन कुल में आ गया पुण्य योग से, लेकिन जैन तो बना नहीं, न भगवान का स्वरूप जानता है, न भगवान की वितरागता का भाव कोई भाषित होता है, और रोजाना पूजा कर लेता है, ये सब कपट है तेरा, क्या है, है? हाँ, कपट भक्ति बोला है, दंभ करता है, कपट करता है, भक्त होने का दिखाव करता है भगवान के सामने बैठ करके, तुम भगवान का भक्त है ही नहीं, कपट रही तो पूजा होनी चाहिए, ऐसा करके गाया है, वही सच्ची पूजा है। लागू पड़ता है, तो कई ज्ञानियों ने तो कपट को कहां से पकड़ा है, देखो पूजा करने वाले के कपट को भी पकड़ा है। कोई कपट पाल तो आता नहीं, भाव रहित जो पूजा करता है, द्रव्य पूजा केवल करता है, वो कपट करता है। वितराग स्तवना में जब तक चित्त में दूसरा भाव हो, चित्त में तो संसार का भाव हो, हे प्रभु मुझे कोई प्रतिकूलता नहीं हो ऐसी कृपा करना, कि संसार में कहीं मुझे दुख नहीं हो, तब तक आपके सिवा दूसरे में मेरे कुछ भी भाव नहीं है ऐसा दिखाना, ये तो वृथाई है, कपट है। और जब तक कपट है वहां तक भगवान के चरण में आत्मा का समर्पण कहां से होता है? कपट रही पूजा है, अर्पण आखी दी से ये बोल चाले, अर्पणा में बोल चाले, समर्पित हो, जिससे सर्व जगत के भाव प्रति विराम पाकर वृत्ति को शुद्ध चैतन्य भाव वाली करने से ही यह वृत्ति में अन्य भाव नहीं रहा, और नहीं रहा होने से शुद्ध कहने में आता है, और वही निष्कपट कहने में आता है। ऐसी चैतन्य वृत्ति भगवान में लीन करने में आए तब ये आत्मार्पणता कहने में आती है। धन धान्यादि सर्व भगवान को अर्पण किया हो, ऋषभ भी भगवान नो स्तवन छे, ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं कंठ। आनंद गंजी स्त्री पर्याय में आकर के बात करते हैं, क्या भगवान से प्रेम करना है ना, तो अपने आप को स्त्री पर्याय में बना लेता है कि ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं कंठ, दूसरा धनी मुझे नहीं चाहिए, कंठ मैंने पति, दूसरा पति नहीं चाहिए, मारे तो ऋषभदेव भगवान ही मेरा पति है बस। धन्य धान्य आदि सर्व भगवान को अर्पण किया हो, परंतु जो आत्मा समर्पण न किया हो, यानी कि आत्मा की वृत्ति भगवान में लीन नहीं की हो, तो यह धन्य ध्यान आदि का अर्पण करना भी स्वकपट ही है, क्योंकि अर्पण करना आत्मा अथवा उसकी वृत्ति तो दूसरी जगह लीन है। तो ऊपर घूमने में बात चली थी ना, लोग हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, तेल तो चढ़ाते हैं तोला दो तोला, और मांगते हैं कि तेल का डिब्बा सस्ता हो जाए, भाव गिरे तो महंगाई कम, महंगाई कम हो जाए तो उतना फायदा हो जाए, तो दो डिब्बे के दाम में तीन डिब्बा मिलेगा तो और आपको थोड़ा तेल और चढ़ाएंगे, महंगा होगा तो थोड़ा कम चढ़ाना पड़ेगा, हाँ ये बात हो जाएगी। भीतर में कपट है, कपट मानता है, जो दूसरे स्थान में लीन है उसका अर्पण किया हुआ जड़ पदार्थ भगवान में अर्पण कहां से हो सकता है? अतः भगवान में चित्त वृत्ति की लीनता यही आत्म अर्पणता है, और यही आनंद घन पद की रेखा यानी तन्ने रे पूजन फल कहो रे पदान छे, चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहो रे, पूजा अखंडित एवं कपट रहित थे आत्म अर्पण रे, आनंद घन पद रे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो और नचाओ रे कंठ। अतएव आत्मार्थी जीव को ऐसे परिणामों को अहित कर जानकर त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। और सरलता का मूल पर्याय बुद्धि है। अब तत्व दृष्टि से बात लेते हैं, थोड़ी गुण देश की थोड़ी चर्चा की, अब तत्व दृष्टि से थोड़ी बात यहां देते हैं कि असरलता का मूल क्या है। पर्याय बुद्धि जिससे जीव के सर्व प्रकार के दोष अंकुरित हो जाते हैं, पर्याय बुद्धि के कारण से सभी प्रकार के दोष उत्पन्न हो ही जाएंगे। पर्याय बुद्धि किसको कहते हैं? वर्तमान पर्याय में मैं ऐसा ही आत्मा हूं ऐसा अभिप्राय, उसको कहते हैं पर्याय बुद्धि। वर्तमान पर्याय में क्या है? संसार अवस्था है, मैं संसारी हूं, फिर मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य में पुरुष स्त्री होते हैं तो मैं ऐसा हूं, फिर मैं इसका बेटा बेटी हूं, इसका माँ बाप हूँ, इसकी भांजा हूँ, इसका मामा हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका भतीजा हूँ, अनेक प्रकार की जितनी भी कर्म के उदय जनित अवस्था, उसमें आत्मबुद्धि ऐसा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव, उसको कहते हैं पर्याय बुद्धि। जैसी कर्म जनित विकारी अवस्था है वैसा आत्मा नहीं है, आत्मा का वैसा स्वरूप ही नहीं है, लेकिन जीव पर्याय बुद्धि होने से वर्तमान कर्मजनित पर्याय रूप अपने को मानता है और अनेक प्रकार का दोष को वो करता है। द्रव्य दृष्टि वाला सभी को द्रव्य के रूप में, अपने को भी द्रव्य के रूप में और दूसरे को भी द्रव्य के रूप में देखेगा। और द्रव्य कैसा है? सिद्ध समान सदा पद मेरो, पर सिद्ध समान सदा सदा पद तुम्हेरो, मेरो भी और तुम्हेरो भी। फिर कोई दोष करने की जगह है ही नहीं, ये बात है। असरलता का मूल पर्याय बुद्धि है जिससे जीव के सर्व प्रकार के दोष अंकुरित हो जाते हैं। गुजराती में सुन बधा प्रकार ना दोष पांगरी जाए छे, पांगरी जाए छे, पांगरवू पांगरवू छे, भाषांतर में फेर पड़ी जाए छे। मूल भाषा है ने गुजराती मूल भाषा है, हाँ पन पे ये ठीक है, ये पांगरी जाए दोष पांगरवा मंडे, पर्याय बुद्धि वाला ना दोष पांगरे पनपे बढ़ते ही जाए, ऐसी स्थिति है। और बढ़ते बढ़ते वो निगोद तक चला जाएगा। दोष बढ़ने से जीव की शक्ति है वो कुंठित हो जाती है, यानी जीव अधिक अशक्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बस ये कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है, डिटेरिएशन चालू हो जाता है, अवस्था डिटेरिएट होती जाएगी, जैसे कोई ज्यादा बीमार रहता है, अधिक बीमार रहता है तो अधिक कमजोर रहता है, अधिक बीमार होता है तो अधिक कमजोर रहता है, ये भी एक रोग है। पर्याय बुद्धि एक सबसे बड़ा रोग है, इसलिए शास्त्र में पर्याय बुद्धि को, पर्याय बुद्धि वाले को मिथ्या दृष्टि कहा है। प्रवचन सार के वराणु गाथा है, पर्याय मुंडा पर समयाहा, जो पर्याय में मुंड है यानी पर्याय जितना ही अपने को मानता है दर्शन मोह के वशात, वो पर समय मैंने जिन मत के बाहर है, अन्य मत ही है, वो जिन मत में है ही नहीं, उसको अजैन कहते हैं, जैन ही नहीं कहते, ऐसा लिया। पर समया, पर समय किसको कहते हैं, जो परमत वाले उसको पर समय कहते हैं। अतो सर्व प्रकार के उद्यम से पर्याय बुद्धि को निरस्त करना योग्य है। सर्व प्रकार के उद्यम से मैंने पूरी ताकत से पर्याय बुद्धि को तोड़नी है। त्रिकाली भगवान आत्मा की अधिकता चूक करके, त्रिकाली भगवान आत्मा की अधिकाई छोड़ देने से, वह महिमावंत होने पर भी उसकी महिमा का लक्ष्य छोड़ करके शुभ और अशुभ उदय को या एक समय के पर्याय को महत्व यानी महिमा देता है पर उसका आश्रय करता है, तो परमार्थ प्रति असरलता है, वो आत्मकल्याण के प्रति असरलता होगी। ये बात होनी चाहिए, सरलता की बात मान ली गया तत्व दृष्टि में से, कि पर्याय बुद्धि छोड़नी है, पर्याय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। दर्शन को मंद करते 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 एक अवसर ऐसा आना चाहिए कि जिससे दर्शन का अभाव हो जाए और द्रव दृष्टि प्रकट हो जाए। मुमुक्षु की भूमिका में एक बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। अवलोकन तक तो उसका सब कार्य पर्याय आश्रय चलता है, पहले दोष देखने से वेदना आती है, फिर पूर्णता के लक्ष्य में पूर्ण पर्याय के लक्ष्य से संवेग आता है, फिर अपने परिणाम को देखने का अवलोकन का स्टेज आता है, वहां तक तो ये मुमुक्षुता की पर्याय का खेल पर्याय के साथ ही होता रहता है। फिर जब जाति की पहचान होती है और स्वभाव जाति के परिणाम से स्वभाव की पहचान होती है, तब परिणाम गुलाट खाता है, एकदम पर्याय की गौणता होकर के जिस आत्मस्वरूप की पहचान हुई उसकी मुख्यता और महिमा एकदम बढ़ जाती है और वो महिमा द्रव्य दृष्टि को प्रकट करती है और पर्याय दृष्टि का नाश कर देती है और फिर पर्याय की गौणता हो जाती है। पर्याय की मुख्यता वाले को ज्ञानी का परिणमन समझ में नहीं आता, क्यों कि ज्ञानी को पर्याय की मुख्यता रहती नहीं, वो दरकार ही नहीं करते ऐसा लगते हैं, क्योंकि उसको तो मोक्ष की भी दरकार नहीं ना, तो फिर बंद की दरकार कैसे करेगा वो, जिसको मोक्ष की दरकार नहीं वो बंद की दरकार भी नहीं करेगा, तो फिर वो किसकी दरकार करता है, तो स्वरूप की दरकार करता है। इसकी पूरी सावधानी स्वरूप के प्रति है, इसलिए पर्याय की गौणता हो गई। और पर्याय की मुख्यकर्ता तो मुख्यता वाले को वो बात समझ में नहीं आती, ऐसा कैसे करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, वो बात कैसे हुई, ऐसा कैसे हुआ, ये गड़बड़ चालू रहती है। आत्मकल्याण की भावना से करता है, पहले सबसे पहले मुमुक्षु को आत्मकल्याण की भावना, भावना का अवलंबन से, भावना का जोर से काम चलता है। फिर अगर कोई सत्पुरुष मिल जाता है इसके जीवन में तो इसका अवलंबन आता है। फिर आगे जाता है तो स्वरूप की पहचान होती है तो स्वरूप का अवलंबन आता है, और फिर दृढ़ दृष्टि होने से स्वरूप का प्रत्यक्ष अवलंबन बरतता है, ऐसा होता है। तो ऊपर ऊपर जाता है तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ देता है, ऐसा बनता है, और वो बराबर है, वो सम्यक है, ऐसा ही क्रम होता है। श्री जिनेन्द्र देव के उपदेश अनुसार श्री गुरु द्वारा सत्श्रवण की प्राप्ति होती है। क्या क्या? श्री गुरु के द्वारा जिनोपदेश का सत्श्रवण होता है, क्योंकि जैसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है वैसा ही ज्ञानी गुरु का उपदेश होता है। जिन वचन कहो, गुरु वचन कहो और ज्ञानी के वचन कहो, एक ही बात है। गुरुदेव जब बैंसरी के वचनामृत पर प्रवचन करते थे तो कहते थे कि ये जिन वाणी है, क्या कहते थे, कि बैंसरी की वाणी, ऐसा नहीं बोलते थे, ये जिन वाणी है, ऐसा कहते थे। और एक प्रसंग ऐसा बना था, द्रव्य दृष्टि प्रकाश के तीसरा भाग को वो अपने हाथ से योग्य मुमुक्षु को देख करके देते थे। उस वक्त की योग्यता देख करके तो उसको नुकसान नहीं होगा, पड़ेगा तो भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे 5 साल निकल गए। एक दिन खुद को विकल्प आया कि वो कितनी छपाई थे, तीसरा भाग की कितनी नकल छपी थे। हमने बोला 2100। कितनी बातें, 500 दे दिया आपको, अब कितनी बाकी रही, 1600 बाकी है। लेके कहाँ है? उनको जरायल जी के घर पे है, एक अलमारी में रख दिया है। तो साथ साथ मैंने थोड़ा एक बात और बता दी कि 5 साल हो गया है साहब, अब तो पानी भी पीले हो जाएंगे, क्या कागज के पत्ते पीले होंगे, वो तो जितने पुराने होते हैं तो कागज की मर्यादा में उसका जीवन होता है। अच्छा, ऐसी बात है, अरे तो जिनवाणी है, उन्होंने शास्त्र बोले, तो शास्त्र है, क्या बोले, तीसरे भाग को क्या बोले, शास्त्र है, शास्त्र को, जिनवाणी को, आगम को, एक ही बात है, असाधना हो जाएगी, क्या बोले, असाधना हो जाएगी। ऐसा करिए, अब सबको देने को चालू कर दो। फिर हम 100-200 गुरुदेव के पास देने लगे और सबको बांटने लगे। 5 साल में समाज को लेवल पर ले आए वो। वो बात समाज पता सके वैसी नहीं थी। 5 साल तक ऐसे प्रवचन किए और परिणाम ही ध्रुव आत्मा का, तो सबको ये बात ध्रुव दृष्टि की सुनने में कठिनता नहीं हो, वरना गड़बड़ हो जाती है। श्री जिनेन्द्र देव के उपदेश अनुसार श्री गुरु द्वारा सत्श्रवण की प्राप्ति होती है, तथापि जीव जीव जीनाजना पर पैर रखकर चलता है, क्या उल्लंघन करता है, बात सुनता है, अंगीकार नहीं करता है, तो ऊपर पैर के नीचे कुचलता है, जिन आज्ञा को पैर के नीचे कुचलता है, अर्थात उपयोग नहीं रखता, सावधानी नहीं रखता, आज्ञा की अवगणना करता है। ऐसे में सरलता कहाँ रही, जिन आज्ञा के विरुद्ध चलना, उसमें सरलता कहाँ रही कि नहीं रही, प्रश्न उठाया है, तो उसमें सरलता नहीं रहती। जीव को अपनी भूमिका की जो बात सुधार करने की सामने आए हैं, फौरन उसी वक्त वो बात को पकड़ लेना चाहिए, अंगीकार कर लेना चाहिए और वो फिरफार कर लेना। सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए, इसका नाम है, इस होगा नहीं जिस बात, सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए, तभी तो सरलता है। और सुनने पर भी अवगणना करना, उसमें सरलता कहाँ रही कि नहीं रही। अब कुछ बातें शास्त्र पर लिया है, शास्त्रों के लिए कथन होते हैं उस पर कुछ चर्चाएं, सरलता के व्यू पॉइंट से लिया है कि शास्त्र पढ़ने में कहां कहां कैसे कैसे असरलता हो जाती है, जानने में, जाने में, अनजाने में कैसे कैसे होती है। तो ये बोलो असरलता मति की असरलता के कारण से होती है, तो उसमें असरलता का कैसा रोल है, भूमिका है, उस पर यहाँ थोड़ा प्रकाश डाला है। सत्शास्त्र में प्रयोजनवश निश्चय और व्यवहार में कथन करने की पद्धति है, कभी निश्चय प्रधान कथन होता है, कभी व्यवहार प्रधान कथन होता है। उदाहरण देते हैं, राग का कर्ता जीव नहीं बल्कि पुद्गल है, ये कौन बोलता है, समयसार बोलता है, समयसार शास्त्र का ऐसा कथन आता है, राग का कर्ता जीव नहीं पुद्गल है, द्रव दृष्टि में ये बात है, किसको, जिसकी द्रव दृष्टि होती है वो कहता है कि राग तो पुद्गल करता है, मैं नहीं। राग के होने में आदि मध्य और अंत में, क्या राग के आदि में, राग के मध्य में और राग के अंत में पुद्गल का नृत्य होता है, पुद्गल नाचता है, मैं नहीं। द्रव दृष्टि का पावर ऐसा होता है। तथा राग का कर्ता जीव है, वो जीव का अपराध है, ये दोनों आगम वचन है, दोनों समय सार में आता है। सम्यक तो होने के पहले अगर तू राग मैं करता हूं ऐसा नहीं मानेगा, नहीं लेगा, तो सांख्य मति हो जाएगा, ऐसा लिखा है। 205 नंबर का श्लोक है, कौन सा, 205, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो बात है। दोनों आगम वचन है और दोनों में आशय की अविरुद्धता है, क्या है, दोनों में आशय अविरुद्ध होता है, शब्द या वचन या कथन में प्रत्यक्ष विरुद्धता लगती है, और आशय में बिल्कुल विरुद्धता नहीं है, अविरुद्धता है। जो सरल परिणामी जीव को सहज रूप से साधने में आती है, जैसे घर में लड़का को समझाने में दो प्रकार होता है। देखो भाई, अपने को ऐसा काम नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है, दूसरे लोगों का काम है, ये अपने लोगों का काम नहीं होता। तो अपना काम करके उनको समझाते हैं कि नहीं करना चाहिए, अपना दोष बता कर अपने को, तुम तो अपना लड़का है इसलिए तुमको ऐसा कहते हैं। क्या है, तुम अपना है ना इसलिए तुमको इस तरह से बात करना है, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी वो नहीं मानता है तो कहते तू मेरा लड़का ही नहीं, क्या कहेगा, अपना भी कहा पर तू मेरा है ही नहीं, ऐसा कहा। तो राग मेरा नहीं है ऐसा किसने कहा, मेरा था इसलिए कहा कि मेरा नहीं। अगर सर्वथा मेरा नहीं होता तो मेरा नहीं है वो कहने की जरूरत भी नहीं होती। तो आशय तो एक ही, राग को मिटाने का आशय है। अपना दोष है ऐसा देखना, वो भी दोष का निषेध करने के लिए, और दोष मेरा नहीं है ऐसा देखना, वो भी दोष का कड़ा निषेध है। तो निषेध करने की पद्धति दो प्रकार की हो गई, निषेध तो दोनों में एक ही हो गया, और निषेध होने से उसका नाश होगा, निराधार हो जाएगा। तो आशय तो दोनों में नाश करने का ही हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से वचन की अविरुद्धता मालूम पड़नी चाहिए, विरुद्धता होने पर भी अविरुद्धता मालूम होनी चाहिए। उसको कहते हैं अनेकांत, उसको कहते हैं स्यादवाद, उसको कहते हैं जीन वचन की कला। ये जीन वचसी रमनते आएगा, आपने को कलश लिया है स्वाध्याय में, तो बात लिया है सुबह के स्वाध्याय में आएगा वो। कैसे तो वचन विरुद्धता है, फिर भी जो जीन वचन में रमते हैं वो विरुद्धता को ध्वंस करने वाला होता है, वो विरुद्धता का नाश करने वाला होता है। और इसका कारण मति सरलता है, और सरलता के कारण से विरुद्धता दिखती है, सरलता के कारण से अविरुद्धता दिखती है। ये दृष्टिकोण है, और भी विशेष लेंगे इस पर, वो बल थोड़ा अधूरा है, दोबारा लेंगे।